नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पीएफआई द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गैर कानूनी संगठन के रूप में अपने पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संगठन को पहले संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। पीएफआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान भी इस पर अपनी सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में पारित हुए यूपीए ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन की अपील पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली एनसीआर समेत उसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली के आसपास के इलाकों गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए GRAP 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। वहीं दिल्ली के प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाने वाली पराली को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलने से ज्यादा हरियाणा और पश्चिम यूपी में पराली जलाने की घटनाएं जिम्मेदार हैं। हालांकि पंजाब में धान की कटाई में तेजी आने के साथ पराली जलाने के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को इस सीजन के एक दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 3,230 मामले सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री के जिले संगरूर से सामने आए। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग से गाजा के लोगों का जीवन बुरी तरह तबाह हो रहा है। इसराइल ने गाजा शहर की घेराबंदी कर ली है और तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रविवार को गाजा की संचार सेवा फिर ठप हो गई, इससे संकट और गहरा गया है। इजरायली सेना के रियर एडमिरल डेनियर हेगारी ने संवाददाताओं से कहा, अब उत्तर गाजा और दक्षिण गाजा को भी विभाजित किया गया है। उन्होंने इसे गाजा पर कब्जा जमाए हमास के आतंकवादियों के खिलाफ इजरायल के युद्ध में अहम चरण कहा। इजरायली मीडिया के अनुसार अगले 48 घंटों में सेना गाजा पट्टी में घुस सकती है। केरल में एक अदालत ने कोच्चि बम विस्फोट मामले में एकमात्र आरोपी को सोमवार को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने आरोपी को 10 दिन के लिए अपनी हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था। प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने डोमिनिक मार्टिन को 10 की हिरासत के अनुरोध वाली पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया। यहां पास के कल्लम शरेरी में 29 अक्टूबर को एक सम्मेलन केंद्र में यहोवा के साक्षी प्रार्थना सभा के दौरान हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें व्यक्ति के आय के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क एवं अन्य संबंधित मामलों में पूछताछ की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपी को निश्चित स्थानों पर ले जाया जाएगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार सुबह कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार है और उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज में जितने महत्वपूर्ण काम किए हैं उनमें सबसे अहम भूमिका हमारी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली को सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये महीना त्योहारों का महीना है। इन त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7,000 रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। TMC सांसद महुआ मोहित्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी 7 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। समिति महुआ के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि समिति की ओर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा सकती है। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बचे हुए सत्र के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के लिए 2005 के एक फैसले का हवाला दिया जा सकता है। जब पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों को निलंबित किया गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।